हालेलुया हालेलुया। हम सब खुदावन से कहेंगे, खुदावन बरकत दे, बरकत दे ताकि उन तमाम जुए बंधनों को तोड़ जो हमारी जिंदगी में रुकावट का बायस बनते, ताकि हम तेरी बरकतों से माला माल होकर तेरी गवाही और खुदावन तुझे पसंद आए और खुदावन खुदा तेरे नाम को जलाल मिले। सो हम सब खुदावन के हुजूर चाहेंगे बरकत मांगने को। खुदावन खुदा के हुजूर एक आवाज़ करेंगे और सब कहेंगे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे, दे बरकत दे, सब कहेंगे बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे, दे बरकत दे, तू जोर हमारा है, फतेहा का नारा है, हालेलुया हालेलुया, कहिए से तू जोर हमारा है, फतेहा का नारा है, तेरे दर पे आए हैं, उम्मीद लाए हैं, तेरे दर पे आए हैं, उम्मीद लाए हैं, हम सब पे कर्म कर दे, सब कहेंगे बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे, दे बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे, दे बरकत दे, तूफानी हवाए हैं, गन गरज घटाए हैं, हालेलुया हालेलुया, तूफानी हवाए हैं, गन गरज घटाए हैं, तूफान में कश्ती है, बिन कैसी हस्ती है, तूफान में कश्ती है, बिन कैसी हस्ती है, आ मुझको सहारा दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे, हे बरकत दे, बरकत दे यीशु, बरकत दे, बरकत दे, हे बरकत दे, हालेलुया, सभी कहिए हालेलुया हालेलुया, खुदावन खुदा तेरा शुक्र करते हैं। तूने कहा मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओ, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। खुदावन खुदा आज की शाम तेरे हुजूर जब बीज का कलाम, कलाम का बीज खुदावन खुदा बोया जाए, जब कलाम किया जाए तो खुदावन एक एक जिंदगी में खुदावन खुदा 100 गुना खुदावन खुदा फल आए और सारा जलाल तेरे बेटे हमारे मुनजी यीशु मसीह नासरी के नाम को मिले और हम सब कम होते जाएं और तू बढ़ता जाए और तेरे नाम को इज्जत और जलाल पाए। खुदाऊं खुदा तेरा नाम खुदाऊं खुदा आला इज्जत और जलाल पाए। आज सब कुछ मांगते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। यीशु के लिए जरा जोरदार तालियां आ जाएंगी। आज मैं सोच रहा था कि खुदा के कलाम में से कलीसिया के साथ, मसीह के दुल्हन मसीह के बदन के साथ क्या शेयर किया जाए, तो 3 बातें मेरे जहन में आई हनोक की जिंदगी से। पहली बात कि वो खुदा के साथ साथ चलता रहा, दूसरी बात वो खुदा को पसंद आया, और तीसरी बात खुदा क्या करता है उसकी गवाही देता है। तो आज हम तीन बातों पर गौर करेंगे कि वो खुदा के साथ साथ चलता रहा, खुदा को पसंद आया और खुदा उसकी क्या देता है जी, गवाही देता है। सो आए देखें तीन हवाला जात को बाइबल मुकद्दस में से, पुराने और नए अहदनामा में। हम जब हनूक को देखते हैं तो हनूक की जिंदगी हमारे लिए क्या है जी, एक बड़ी ही जबरदस्त तस्वीर है। पुराने अहदनामा में कलीसिया की क्या है जी, वो नुमाइंदगी करता है कि नए अहदनामा में खुदावंद खुदा कलीसिया के साथ क्या करेगा। तो जब हम पुराने अहदनामा में पैदाइश की किताब उसका पांचवा बाब देखते हैं तो उसकी 24वीं आयत में यह लिखा है, और हनूक, पैदाइश उसका पांच बाब उसकी 24वीं आयत, और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा और वो गायब हो गया क्योंकि खुदा ने उसे उठा लिया। यहां पर हम जब देखते हैं वो खुदा के क्या करता रहा जी, साथ साथ चलता रहा। और पिछली आयत में जब हम देखते हैं तो उसकी कुल उम्र का हमें जिक्र मिलता है कि उसने कितने साल तक खुदा के साथ की है जी, मोहब्बत की है, ताबेदारी की है, उसके साथ चलता रहा। सो चलने का जो लफ्ज हम देखते हैं नए अहदनामा में, पुराने अहदनामा में, इससे मुराद क्या है जी, जिंदगी बसर करना, जिंदगी बसर करना। जब हम नए अहदनामा में मिसाल के तौर पर इफिसियों की किताब को देखते हैं तो इफिसियों का जो पूरा का पूरा खत है उसे हम तीन बातों में क्या कर सकते हैं जी, सीख सकते हैं। और वो तीन बातें क्या है जी, उसके छह बाप हैं कुल। इफिसियों के खत के कितने बाप हैं जी, छह बाप हैं, और उसको हम तीन बातों में सीख सकते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से तल्लक रखती हैं। वो क्या है जी, बैठना, चलना और खड़े होना। इफिसियों के जब हम पहले तीन अबवाब को देखते हैं तो वहां पर खुदा का कलाम हमें क्या सिखाता है जी, हमारा मकाम, हमारा दर्जा, हम मसीह में कौन है, हमारी पहचान क्या है, हमारी क्या हैसियत है, खुदा ने हमें क्या कुछ दिया हुआ है, हम उसके प्यारे हैं, उसके खून खरीदे हैं, उसके चुने हुए हैं, उसने हम पर रूह की मोहर की है, हम रूह कुदस का मकदस हैं, खुदावंद हमारा क्या है जी, चुपान है, और उसने आसमान पर हमें हर तरह की रूहानी बरकात बख्शी है। जब आप इफिसियों के खत को देखते हैं तो ये पहले तीन बाब क्या है जी, इंग्लिश में से क्या कहते हैं, सिट, उर्दू में हम कहते हैं बैठना। पहले तीन बाप हमें सिखाते हैं बैठना, यानी कि हमारा मकाम, हमारा दर्जा, हमारी मसीह में क्या हालत है। सो चार बाप की पहली आयत से जब हम छठे बाप की नौवीं आयत तक पढ़ते हैं तो हमें वहां पर क्या सीखने को मिलता है जी, चलना। चौथा बाप इस बात से शुरू होता है कि मैं मसीह यसु का कैदी तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपनी बुलावे के मुआफिक क्या करो जी, चाल चलो, अपने बुलावे के मुआफिक जिंदगी बसर करो। इंग्लिश में उसे कहते हैं वॉकिंग अकॉर्डिंग टू योर कॉलिंग विच गॉड हैज कॉल्ड यू। वॉकिंग यानी के क्या है जी, चलना। सो हनूक की जिंदगी में जब देखते हैं वो 300 बरस तक खुदा के साथ साथ चलता रहा, जिंदगी गुजारता रहा, और उस जिंदगी में उसने क्या किया जी, खुदावन खुदा को खुश किया। और जब हम तीसरा हिस्सा देखते हैं इफिसियों के खत का तो छठे बाप से दसवीं आयत से लेकर बाप के अखीर तक जब देखते हैं तो इन 10 आयत जो कम से कम सम 10 आयत हैं, 10 आयत से लेकर 22वीं आयत तक देखते हैं तो वहां पर हमें सीखने को जो सच मिलता है वो क्या है जी, खड़े होना। सो इफिसियों के तीन बातों में हम सीख सकते हैं सिट, वॉक एंड स्टैंड। और छठे बाब की दसवीं आयत में क्या लिखा है, गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदावंद के सब हथियार बांध लो ताकि अबलीस के मुकाबले में तुम क्या रह सको जी, कायम रह सको। कायम रहने का जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया उर्दू जुबान में, इंग्लिश का जो लफ्ज उसके लिए है वो क्या है जी, टू स्टैंड फर्म, के खड़े होना, कायम होना, मजबूत होना, अपने मुकाम को क्या करना जी, अपनी जगह पर क्या होना जी, कायम दायम होना। सो ये तीन बातें हमें क्या जी, पूरी मसीही जिंदगी के बारे में सिखाती है कि हम रूहानी तौर पर पैदा होते हैं, खुदावंद खुदा के साथ जिंदगी बसर करते हैं, और फिर हमारी रूहानी जंग है, और वो जंग क्या है जी, खून और गोश से नहीं, आपस में नहीं, बल्कि शरारत की क्या है जी, रूहानी फौजों से है। तो हनूक की जिंदगी भी हमें तीन बातें ही सिखाती हैं। पहली बात क्या है जी, वो खुदा के साथ चलता रहा, खुदा के साथ साथ उसने चला और खुदावन खुदा को उसका चाल चलन पसंद आया। दूसरी बात, मेरे साथ है कि अब्रानियों 11वां बाप उसकी 5वीं नए अहदनामा में जब आ जाते हैं तो वहां पर वो क्या है जी, खुदा का वो क्या है जी, पसंदीदा ठहरा। ईमान ही से हनूक उठा लिया गया था ताकि मौत को ना देखे, और चूंकि खुदा ने उसे उठा लिया था इसलिए उसका पता ना मिला, क्योंकि उठाए जाने से पेशतर उसके हक में ये गवाही दी गई थी कि ये खुदा को पसंद आया। तो दूसरी बात हम देखते हैं कि वो 300 बरस तक खुदा के साथ साथ चलता रहा और खुदा को क्या आया जी, उसका चाल चलन पसंद आया। तो यहां पर लिखा है उठाए जाने से पेशतर खुदा ने उसकी गवाही दी, और यहां पर जिक्र मिलता है कि खुदा ने उसे उठा लिया था, उसने मौत का मजा नहीं चखा। बाइबल मुकद्दस में जब हम सर्च करते हैं तो मुझे आपसे सवाल करना होगा, कितने लोग हैं जिन्होंने मौत का मजा नहीं चखा? पहला तो हनूक हो गया, दूसरा एलिया, उसके अलावा फिर खुदावंद यीशु मसीह ने मौत का मजा चखा। कोई और जहन में आ रहा हो? ये दो ही हैं। तीसरा क्या है जी, मूसा का है। बहुत से लोग कहते हैं उसे जिंदा उठा लिया गया, लेकिन जब हम इस्तिस्ना की किताब के आखिर में देखते हैं तो लिखा है कि वो 120 साल की उम्र में वफात पा गया, और खुदावंद खुदा ने उसे जो पहाड़ियां थी वहां पर उसका क्या किया जी, खुद उसका जनाजा, उसका सब कुछ, उसका क्या किया जी, उसका इंतजाम किया। सो हमें हनूक मिलता है जो जिंदा आसमान पर उठाया गया, जिसने मौत का मजा नहीं चखा। हमें एलिया का जिक्र मिलता है जो जिंदा आसमान पर उठाया गया, जिसने मौत का मजा नहीं चखा। और यीशु मसीह है जिसने मौत का मजा चखा, लेकिन उसके बाद फिर मुर्दों में से जिंदा हुआ, जी उठा। सो यहां पर हम देखते हैं इसने मौत को ना देखा, बल्कि खुदा का कहता है उठा लिया गया और उसका पता नहीं चला। यह दरअसल क्या है जी, मुस्तकबिल के बारे में खबर है। हमारा जब खुदावंद यीशु मसीह हमें लेने के लिए आएगा, उसकी दो आमदें हैं। पहली आमद जो थी, जब वो बच्चे के रूप में आया तो उसने क्या किया जी, आसमान का तख्त, शरफ, हर तरह की कुदरत, हर तरह के फरिश्तगान को छोड़ा और जमीन पर छोटा सा बेबी बनकर आ गया। अब एक और सवाल आपसे, उधार चीजें लेना पसंद है ना सानू? कोई किसी को पेंसिल मांग लेंदा, कोई किसी को कहता क्या मैनू जी अपना, कहें कि सालन थोड़ा दियो कल नू दे दांगे, पानी दे दो, ये दे दो, वो दे दो, उधार चीजें। सो आपसे सवाल, यीशु मसीह ने कौन कौन सी चीजें उधार ली इस जमीन पर? कभी आपने सोचा है कि यीशु मसीह ने बहुत सी चीजें उधार ली इस जमीन पर ताकि क्या करे, खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे। ये स्टडी का हिस्सा नहीं, लेकिन ये सवाल है आप सबसे, क्योंकि इस पर मैं किताब लिख रहा हूं, द थिंग्स द जीसस ऑफ नेजरेथ बोरो, वो चीजें जो खुदावंद यीशु नासरी ने क्या की जी, उधार ली। तो इसमें बहुत सी चीजें हैं, आपको वो किताब मिलेगी। और सबसे पहली बात जो यीशु ने उधार ली वो क्या है जी, इंसानी बदन है। इंसानी बदन है। इब्रानियों 5 बाब को देखते हैं तो उसने कहा कि खुदा ने उसके लिए बदन तैयार किया। तो सबसे पहले यीशु मसीह ने क्या किया जी, बदन उधारा लिया ताकि उस बदन को क्या कर सके, इस्तेमाल करे कि इंसानी रूप इख्तियार करे, क्योंकि खुदा क्या है जी, रूह है, और उसको बदन हासिल करना ज़रूर था कि इंसानों के दरमियान इंसान बनकर रहे ताकि अपनी मर्जी और अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकें। सो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन आए वापस के कलीसिया को उठा लिया जाएगा और पता नहीं चलेगा। ये ऐसी खबर होगी दुनिया में, करोड़ों अरबों लोग क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, और लोग कहेंगे कि क्या हुआ उनके साथ। और हमारी बाइबल जो पीछे रह जाएगी, ये रिकॉर्डिंग जो हो रही है, कोई सुनेगा इस पैगाम को, वो कहेगा 2019 में 5वें महीने की 3 तारीख को ये पैगाम दिया गया था, और हमें अब समझ आ रही है आज 10, 20 साल, 50 साल बाद के इसके बारे में बाइबल में कहा गया था कि एक दिन आएगा कि खुदा क्या करेगा, अपने मुकद्दसीन को उठाकर ले जाएगा, जैसे उसने हनूक को उठाया, जैसे उसने एलिया को उठाया, और जिस तरह वो अपने बदन कलीसिया को उठाएगा। हमारी खबर नहीं होगी। और मेरा एक दोस्त है अमेरिका में, तो वो डॉक्टर है, उसने अपने पड़ोसी को बताया, वो उसे बहुत है ना खुशखबरी का पैगाम देता, कहता है कि भाई तौबा कर लो, यीशु को कबूल कर लो, तुम दोजख की आग से बच जाओगे। कहना नहीं, मैं नहीं लेकर नहीं। तो उसने इसे कह रखा है कि मेरे घर में जब हम गायब हो जाएंगे तो मेरे घर में जाना नीचे बेसमेंट में, वहां पर दो तिजोरियां पड़ी हैं, उन तिजोरियों का ये नंबर है और उसमें सोना चांदी हीरे जेवरात और पैसे, और मैंने एक बाइबल रखी हुई है हाईलाइट करके हवाला जात को लिखकर उसमें रखा हुआ तुम्हारे लिए, तुम्हें खुली इजाजत होगी जब हम उठा लिए जाएंगे, अगर तुम यीशु को कबूल नहीं करोगे और कलीसिया उठा ली जाएगी तो तुम जमीन पर बाकी होगे, जाकर वो सारी दौलत सब कुछ उठा लेना, लेकिन याद रखना कि वहां पर बाइबल है, उस पर तुम्हारा नाम मैंने लिख कर रखा हुआ है ताकि तुम समझ सको कि मेरे पड़ोसी ने मुझे पहले ही बता दिया था। तो मैंने कहा कि मैं अपने दोस्त से कहा कि ये बड़ी जबरदस्त बात तुमने की हुई है। मैंने भी बहुत से लोगों को बताया हुआ कि अगर मैं अमेरिका में नहीं हूंगा और ऐसे हालात हो जाएं तो आप जाना वहां पर, मेरी दो उर्दू बाइबल है, उसको जब खोलोगे तो आपको काफी कीमती चीजें उसमें से मिलेंगी, उसे ले लेना और वगैरह वगैरह चीजें। सो आप भी लोगों को कह सकते हैं कि भाई असी जब उठा ले जावांगे तो साढ़े पीछे आन के अगर मक्खन पिया तो खा जाना, कोई और कीमती चीज पड़ी है तो ले लेना। तो यहां पर क्या हुआ, उसका पता नहीं चला क्योंकि खुदा को वो क्या आया था जी, पसंद आया। ये लफ्ज पसंद आया का मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है, इसकी खुशबू क्या है जी, बारबेक्यू की खुशबू है। अनोखर पर है ना जी बारबेक्यू की दुकान, वहां पर तिक्का बोटी और पीस जब वो भूनते हैं तो उसकी खुशबू आती है और वो बहुत पसंदीदा है। हनूक की जिंदगी खुदा को क्या है जी, पसंद आई। जो लफ्ज उर्दू में है वो क्या है जी, पसंदीदा। इंग्लिश में है प्लीजिंग टू गॉड, और अबरानी जबान के बारे में यूनानी जबान हमें सिखाती है कि इस खुशबू से खुदा को क्या मिली जी, राहत मिली। सो कलीसिया उठाई जाएगी, सो यहां पर वो खुदा को क्या आया जी, पसंद आया। और उसके बाद फिर तीसरी बात क्या देखते हैं उसकी जिंदगी में, गवाही, कि खुदावन खुदा उसकी गवाही देता है। और उसकी गवाही के लिए हमें जो हवाला मिलता है वो यहूदा, उसका एक ही बाप है, और उसकी 14वीं आयत से जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर यूं लिखा है, इन दिनों के बारे में हनूक में, हनूक ने भी जो आदम से 7वीं पुश्त में था ये पेशिन गोई की थी कि देखो खुदावंद अपने लाखों मुकद्दसीन के साथ आया। जब इस आयत को देखते हैं तो इसका दो बातों से तल्लक बनता है, दो बातों से तल्लक बनता है कि खुदावन खुदा अपने लाखों मुकद्दसीन से आया, दो बातों से। कि एक कहते हैं कि जी ये कलीसिया के उठाए जाने पर खुदा करोड़ों अरबों फरिश्तों के साथ क्या आएगा जी, जमीन पर आएगा जब नरसिंगा फूका जाएगा पा 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 पा। और जितने मसीही होंगे वो सारे क्या होंगे जी, आग चपकते ही क्या होंगे जी, जलाली हालत में बदल जाएंगे। पहले वो जो मर गए हैं वो जिंदा होंगे, जो हम बाकी होंगे वो सब क्या होंगे जी, एक पल में। कोई बीमारी नहीं रहेगी, कोई फिक्र नहीं रहेगी, कोई खौफ नहीं रहेगा, किसी बात की क्या होगी जी, तंगी नहीं होगी। एक मिनट में हम क्या हो जाएंगे, वो तजर्बा करेंगे जो यीशु मसीह के शिगिर्दों ने किया था, जब यीशु को उस पहाड़ पर जब वो दुआ कर रहा था और उसका चेहरा क्या हो गया, बर्फ की मानद सफेद हो गया, और आसमान से बदली ने उनको छुपा लिया, और वहां पर पतरस यकूब और यहन्ना मुंह ऊंधे मुंह होकर खड़े बैठे हैं, और जब वो सुनते हैं किसको जी, यीशु को, मूसा को और एलिया को आपस में बातें करते हुए। ये भी बड़ी जबरदस्त स्टडी है। जैसे मैंने आपको कहा था कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद किन किन लोगों पर जाहिर हुआ, वो सारी स्टडीज के अलावा मरने से पहले यीशु मसीह किन पर जलाली बदन में जाहिर हुआ, अगर आप किसी से सवाल करेंगे बहुत से लोग इसका जवाब नहीं देंगे। और उसका जवाब क्या है, पतरस यकूब और यहन्ना पर उन्होंने उसे क्या देखा, जलाली बदन में देखा। जब यीशु ने कहा कि तुम में से बथेरे हैं जो इस पहाड़ पर खड़े हैं जब तक वो, तब तक वो मौत का मजा नहीं चखेंगे जब तक मुझे अपने जलाल में देख ना लें। और उसका जलाल क्या था, उन्होंने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठे जलाली बदन में देखा, हालांकि यीशु मरा नहीं था, और उसकी सफात उसकी पोशाक बरक सफेद क्या है जी, दूध की मानद हो गई। तो तीसरी बात को हम देखते हैं क्या हुआ जी, हनोक भी आदम से सातवीं पुश्त में था, ये पेशन गोई की कि देखो खुदावंद अपने लाखों मुकद्दसीन के साथ आया। ये कब आएगा इस बात खुद आप सर्च कर सकते हैं। इसके दो नजरियात हैं, एक कलीसिया के उठाए जाने पर और दूसरा कलीसिया जब वापस आएगी अदालत के वक्त। क्योंकि आगे जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है 15वीं आयत में, ताकि सब आदमियों का इंसाफ करे और सब बेदीनों को उनकी बेदीनी के उन सब कामों के सबब से जो उन्होंने किए उन्होंने बेदीनी से किए उन सब और उन उन अब बेदीनी से किए हैं और उन सब सख्त बातों के सबब से जो बेदीन गुनाहगारों ने उसकी मुखालफत में किए थे किए हैं कसूरवार ठहराए। सो इससे दो बातें हमें सीखने को मिलती है, कलीसिया के उठाए जाने पर या फिर कलीसिया जब वापस आएगी अदालत करने पर। आपको याद दिलाना चाहता हूं यहां पर बेइंसाफी ना करें किसी के साथ, क्योंकि हमें इंसाफ करने को मौका मिलेगा, हम फरिश्तों का हिसाब करेंगे। फरिश्तों से कहेंगे कि जवान जरा सीधा हो जा, अगे तुसी सानू अजमाने सी हुन असी ताड़ी अजमाइश करनी आ, तुसी किस तरह नाफरमानी की थी। ईमानदारों को मुकद्दसीन को मुकद्दसीन कौन किन को कहा गया जी, हम सबको। मुकद्दसीन का लफ्ज बाइबल मुकद्दस में फरिश्तों के लिए इस्तेमाल किया गया है और फिर कलीसिया के लिए, कलीसिया हर एक ईमानदार के लिए। सिर्फ पत्रस को मुकद्दस पत्रस नहीं कहा गया, शमौन को बाइबल मुकद्दस के मुताबिक। खुदा क्या कहता है, मुकद्दस कहता है, हम मुकद्दस कौम है। याद है आपको पहला पत्रस उसका दो बाप उसकी नौ आयत में क्या खुदावंद का बंदा पत्रस कहता है, तुम शाही काहिनों का फिरका और मुकद्दस कौम हो, तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से खरीदे गए हो और क्या करो जी, खुदावंद का जलाल अपने बदनों से जाहर करो। पहले तुम कोई उम्मत नहीं थे, अब खुदा की क्या हो जी, उम्मत हो। तो तीन बातें, हनोक क्या आया जी, खुदा को नहीं, पहली बात क्या थी, वो खुदा के साथ चलता रहा, दूसरी बात वो खुदा को पसंद आया, और तीसरी बात खुदा ने उसके बारे में गवाही दी। वो खुदा की गवाही देता है कि वो अपने मुकद्दसीन के साथ इंसाफ करने को आएगा और हम इंसाफ करने वालों में होंगे, हमारा इंसाफ किया नहीं जाएगा। जैसे आज के दौर में जैसे अय्यूब के किस्से को जब पढ़ते हैं तो वो शैतान जाकर कहता है अय्यूब का हाल देख, ओ ते एवें तेरी इबादत करदा, क्योंकि उन्हों तू माल डंगर रुपया पैसा जमीन जायदाद सब कुछ दिता, इस करके वो कहता जय खुदावन तेरी जय खुदावन तेरी, जरा अपना हाथ उठा और फिर मैं देख उसे कैसा करता हूँ और तेरे मुंह पर वो क्या करेगा, तेरी तकफीर करेगा। अब हमें अबलीस और उसके बशिंदे क्या करते हैं, अजमाते हैं, अल्जाम लगाते हैं, जैसे रोमियो 8 बाप में कौन हम पर नालिश करेगा, अगर खुदावन ने अपने बेटे को दरेग ही नहीं किया हमारे वास्ते कुर्बान कर दिया तो कौन हमारा मुखालिफ है अगर खुदा हमारे साथ है। अगर का मतलब है यानी कि बिल्कुल दुरुस्त है, वो हमारे साथ है। सो तीन बातें, वो खुदा के साथ चलता रहा, हमें क्या करना चाहिए, कलीसिया होते हुए खुदा के साथ चलने की ज़रूरत है, खुदा के साथ चलने की ज़रूरत है। और उसके लिए एक हवाला आप सब के लिए होगा, वो है यशुआ 1 बाप उसकी 8 आयत, शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे बल्कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान हो ताकि तू अत्यात करके इस पर अमल करके क्या कर सके जी, अकबाल मंदी की राह नसीब हो सके, तुझे कामयाब हो सके। तो खुदा के साथ चलने के लिए हमें क्या करना होगा, यशुआ 1 उसकी 8, जबूर 119 उसकी 105 आयत, मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया, नहीं सॉरी 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 सॉरी, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। और खुदा को पसंद आना उसके लिए रोमियो 12 बाप उसकी 2 आयत, इस जहां के हम शक्ल ना बनो बल्कि अपनी अकल ने हो जाने से खुदा की कामल और पसंदीदा मर्जी को तजर्बा से मालूम करते रहो कि उसको क्या पसंद है। खुदा को पसंद आने के लिए हमें पसंद करना होगा कि खुदा को क्या पसंद है। जैसे हमारे दरमियान नया जोड़ा बैठा हुआ है, भाई और उनकी मिसेस, उनको अब जो जिंदगी का सफर शुरू किया है उनको जानना होगा कि आपस में उनको क्या पसंद है क्या ना पसंद है, ताकि वो क्या कर सके जी, खुदावन में एक दूसरे की तरक्की का, रूहानी बरकत का और जिंदगी का क्या बन सके जी, बरकत का वसीला बन सके। अगर एक को कुछ पसंद नहीं और दूसरा कहे कि मुझे पसंद है, तो फिर क्या होगा जी, फैसला करना होगा कि ना पसंद करे या पसंद करें। वैसे ही खुदा को पसंद आने के लिए हमें उसकी पसंद को जानना होगा कि उसे क्या पसंद है, किन बातों में खुदा को ना खुशी होती है, खुशी नहीं होती, ताकि हम भी उसमें कहें कि जो बात खुदा का दिल तोड़ती है वो मेरा तोड़ती है, जो बात खुदा को पसंद है वो मुझे पसंद है, जो बात खुदावन चाहता है वो मैं करूंगा। ठीक वैसे ही शादीशुदा जिंदगी भी ऐसी है कि मेरी बदन को क्या पसंद है मैं वैसा ही करूंगा, ये नहीं कि मेरे बदन में एक रोटी की जरूरत है तो मैं उन्होंने भुखा मारी जावा। खुदा को पसंद आने के लिए पसंद जानने की जरूरत है खुदा को क्या पसंद है। तीसरी बात जी, गवाही, खुदा उनकी गवाही, उसी लिखा उसके लिए मकाशवा, जब हम उसका गालबन सातवां बाप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि यस्सू की गवाही क्या है जी, नबूवत की रूह है। आप नबूवत कर सकते हैं और वो नबूवत किस तरह है, नहीं कही घरे जाओ तो ताड़े फ्रिज दे विच 12 अंडे पे होंगे, ये नबूवत नहीं है। नबूवत की जो बात मैं कर रहा हूँ वो ये कि आप दूसरों को बता सकते हैं कि भाई आने वाले दिनों में हम आसमान पर जाएंगे, अगर तुम यीशु को कबूल नहीं करोगे तो तुम ततियां कड़ाइयां च। इसलिए नबूवत की ये बात, आप जिसको भी खुदा का कलाम बताते हैं आप क्या कर रहे हैं जी, नबूवत कर रहे हैं कि मुस्तकबिल में क्या होगा। मैं अभी नबूवत कर रहा हूँ, बेशक मैं नबी नहीं लेकिन क्या हूँ, खुदा के कलाम की नबूवत पढ़कर आपको सुना रहा हूँ। ये क्या है जी, नबूवती कलाम है और वो क्या है, गवाही। पाजो ताड़े दो तो नहीं कितने बाहर पे जी, सो गवाही। सो इन तीन बातों को हमें करने की जरूरत है, खुदा के साथ चलना, खुदा को पसंद आना और खुदावन खुदा क्या करता है जी, हमारे वसीला से क्या करना चाहता है, अपनी गवाही देना चाहता है। और वो गवाही क्या, उसके लिए मत्ती 28 बाप उसकी 19वीं आयत में क्या लिखा है, पास जाओ और सब कौमों को जाकर क्या बनाओ जी, शागिर्द बनाओ, उनको खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूहुल कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो और उस सारी तालीम की क्या दो जी, उनको सिखाओ जो मैंने तुमको दी है और मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। सो तीन बातें, वॉकिंग विद गॉड, प्लीजिंग टू गॉड, विटनेसिंग फॉर गॉड, खुदा के साथ चलना, खुदा को पसंद आना, खुदावन खुदा की गवाही देना। आए हम खुदा के जुर झुके और दुआ करें। खुदा बाप तेरा शुक्र करता हूँ आज के कलाम के लिए खुदावन खुदा, सारे खानदान के लिए खुदावन खुदा, इनको बरकत दे और खुदावन खुदा नए जोड़े के लिए खुदावन तुझसे बरकत चाहता हूँ, इनको बरकत दे, अपने जलाल अपनी गवाही के लिए कसरत से इस्तेमाल कर, ताकि तेरी पहचान, तेरे रफान और रूहानी जिंदगी को बसर करते रहें और खुदावन खुदा बथेरों के लिए खुदावन खुदा नूर बनकर, खुदावन खुदा जिंदगी का खुदावन खुदा पुश्ता बनकर बथेरों के लिए खुदावन खुदा रहनमाई का वसीला ठहरें। सारे बच्चों को, बड़ों को, बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को बरकत दे, जो नहीं आ सके उनको भी बरकत दे और जो इस कलाम को सुनेंगे मुस्तकबिल में उनकी भी रहाई का वसीला बने, तंदुरुस्ती का वसीला बने, यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया, यीशु ली जरा जोरदार तालियां हो जाएंगी।